पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 130। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, इन्द्रसदवन्द्याणं, त्रिवणहितमधुरविशदवक्काणं, अन्तादीदगुणाणं, नमो जिणाणं जिदभवाणं। ये आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित जो पंचास्तिका संग्रह नामक शास्त्र है, उसके हमने 126 और 127 नंबर की गाथा कल देखी थी। वह उसमें जो अरस अरूपिया जी जो बात है, वो तो हर कुंदकुंद आचार्य के परमागम में लिखी हुई है, और आपने भी बताया था कि वह धवला में भी है। ये यानी ये पुराना मूल ओरिजिनल सूत्र जिसको कहते हैं, वो है जिनेन्द्र भगवान की वाणी से निकली हुई बात है। अभी हमने ये दोनों गाथा भी देखी थी, उसका अन्वयार्थ भी देखा था। अभी इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका जो जयसेन आचार्य की है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ, तात्पर्य वृत्ति अथ यानी अब संस्थानादि पुद्गल पर्याया जीवेन सह क्षीर नीर न्यायेन तिष्ठन्ति अपि। क्या कहते हैं ये पुद्गल की पर्याय बताई ना, संस्थानादि, संस्थान, संघात वगैरह। पेज नंबर 57 यानी 126 127 की टीका, आपका नंबर अलग होगा पेज नंबर। गाथा नंबर 126 और 27 उसकी तात्पर्य वृत्ति टीका, नए पुस्तक एसी नंबर मिला। हाँ देखो, अथ संस्थानादि, ये गाथा में ऊपर क्या बताया, संस्थान संघात शब्द, ये वर्ण रस गंध स्पर्श वगैरह जो है पुद्गलों के गुण और पर्याय, यहाँ बात हुई थी। अब यहाँ यही बताते हैं कि संस्थानादि पुद्गल पर्याया, ये पुद्गलों की पर्याय जो है संस्थान संघात वर्ण रस वगैरह है, वो जीव के साथ क्षीर नीर न्यायेन तिष्ठन्ति। वो क्षीर नीर न्याय समझते हैं, नीर यानी पानी और क्षीर यानी दूध, वो इकट्ठा रहता है यानी एक जैसा लगता है। तो ऐसा रहने पर भी निश्चय न जीव स्वरूपम न भवंती, यानी वो पुद्गल की पर्याय है, वो जीव रूप नहीं होती, इति भेद ज्ञानम दर्शयति। तो जीव का और पुद्गल का भेद ज्ञान यहाँ बता रहे। समचतुरस्रादि षट संस्थानानि, यानी समचतुरस्रादि छह प्रकार के संस्थान पाए जाते हैं, मालूम है आपको? हाँ बताएंगे आप। पहला है समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, हाँ ये छह प्रकार के संस्थान है, शरीर के आकारों की बात है। औदारिकादि शरीर संबंधी न पंच संघाता, ये संघात जो होते हैं, छिद्र रहित जो शरीर की रचना होती है उसको संघात कहते हैं, उसमें वो संघात नाम कर्म का उदय निमित्त पाया जाता है। तो प्रत्येक शरीर संबंधी उसका संघात होता है। वर्ण रस गंध शब्दाश्च, वर्ण रस स्पर्श गंध शब्दाश्च, और ये भी क्या है, ये पुद्गल की बातें हैं। संस्थान आदि पुद्गल विकार रहितात, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय सहितात, परमात्म पदार्थात निश्चयन भिन्नत्वात, एते सर्वे च पुद्गल द्रव्य प्रभवाहा। क्या कहना चाहते हैं? ये जो पुद्गलों की बातें बताइए कि जो संस्थान है, संघात है, वर्णादि जो है, ये सब कैसे हैं? तभी जीव का वर्णन कर रहे हैं कि संस्थान आदि पुद्गल के विकारों से जो रहित है और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से जो सहित है, ऐसा जो परमार्थ पदार्थ है उससे वो निश्चय से भिन्न होने के कारण सर्वेच पुद्गल द्रव्य प्रभवाहा, ये सभी जो है वो पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। कौन से? संस्थान, संघात, वो वर्ण रस स्पर्श गंध शब्द, ये सब पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं, उससे प्रभव हुए ना, उससे उत्पन्न हुए। एतेषु मध्ये के गुणाः के पर्यायः इति प्रश्ने सति प्रत्युत्तरम् आह। अभी ये जो बताए वहां पर संस्थान वगैरह बताए हैं, संघात बताए, वर्ण वगैरह बताए हैं, तो उसमें से गुण कौन से और पर्याय कौन सी है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। वर्ण रस स्पर्श गंध गुणा भवन्ति। ये वर्ण रस स्पर्श और गंध ये पुद्गल के गुण है। संस्थानादयः तु पर्यायः, ये संस्थान, संघात, शब्द, ये सब पर्याय हैं। तेच प्रत्येकं भवा, और वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये जो पर्याय जो है वो अनेक प्रकार के होती है। इति सूत्राभिप्राय, यानी केवल ये दो ही नहीं है, वो अनेक प्रकार उसके पाए जाते हैं। एवं पुद्गलादि पंच द्रव्याणाम अजीवत्व कथन मुख्यतया गाथात्रयेन पंचम स्थलम गतम। इस तरह से पुद्गलादि पांच अजीव द्रव्यों के, क्योंकि हमने देखा था ना केवल पुद्गल ही अजीव नहीं है, तो पुद्गल के साथ धर्म अधर्म आकाश काल ये भी अजीव द्रव्य है, इसलिए कहते हैं पुद्गल आदि पांच द्रव्याणाम, उन यानी उन द्रव्यों का अजीवत्व कथन मुख्यतया, उन संबंधी में वो अजीवत्व का कथन करने की मुख्यता से तीन गाथा रूप से पहला स्थल गया। अथ यदि संस्थानादयो जीव स्वरूपम न भवन्ति तरही किम जीव स्वरूपम इति प्रश्ने प्रत्युत्तरम आह। अब कहते यदि संस्थानादि जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी तक उसी को अपना स्वरूप मान लिया ना, मैं ऊंचा हूँ, मैं ठिंगना हूँ, मैं कैसा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये सब जो पुद्गल के जो गुण और पर्याय है उस रूप जीव ने अपने को माना था, तो यूं यदि अगर जीव का स्वरूप नहीं है तो जीव का स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हैं। और असम यानी जीव का अरस, ये जीव का अपना स्वरूप है, तो कहते हैं अरसम यानी रस गुण सहित पुद्गल द्रव्य स्वरूपो न भवती। जीव को अरस कहने से रस गुण सहित जो पुद्गल द्रव्य है उस रूप जीव नहीं है, यानी जीव द्रव्य जुदा है, पुद्गल द्रव्य जुदा है, यानी रस गुण वाले पुद्गल द्रव्य से ये जुदा है, उससे रहित है, उस रूप नहीं है। रस गुण मात्रो वा न भवती, यानी रस गुण भी नहीं है। रस ग्राहक पौद्गलिक जीवा अभिधान, नेक्स्ट पेज पर आना, द्रव्येन्द्रिय रूपो न भवती, यानी जीव को अरस कहने से रस गुण का ग्राहक यानी रस को जानने वाली जो पौद्गलिक द्रव्येन्द्रिय है ना जीवा नाम के, जिसको हम रसना इंद्रिय कहेंगे, रसना इंद्रिय में वो जानने वाला ज्ञान भी है, क्षोभशम ज्ञान, उसको भी भावेन्द्रिय कहेंगे, और वो जो यहाँ जो जीव जो है वो द्रव्येन्द्रिय है, तो वो भी जीव नहीं है, ये कह रहे। रस ग्राहक यानी रस को जानने वाली पौद्गलिक जीवा नाम की यानी रसना नाम की जो द्रव्येन्द्रिय है उस रूप भी जीव नहीं होता। तेन एव जिह्वा द्रव्येन्द्रियेण करणभूतेन परेषां स्वस्य वा रसवत् परिच्छेद्यो न भवति। क्या कहते हैं? यानी उसी जिह्वेन्द्रिय जो करणभूत ऐसे जो जिह्वेन्द्रिय से परेषां स्वस्य वा रसवत् परिच्छेद्यो न भवति, यानी वो दूसरों के द्वारा अपना भी वो रसवत परिच्छेद यानी उसका ज्ञान नहीं होता, निश्चय न येन स्वयं द्रवेंद्रियेण रसग्राहको न भवति इति, यानी वो स्वतः जो जीव है वो भी, क्योंकि उसमें रस गुण नहीं है तो द्रवेंद्रिय के द्वारा, रसनेन्द्रिय के द्वारा वो स्वयं को नहीं जान सकता। उसमें इतनी सारी बातें उन्होंने एक अरस में से निकाली, यानी वो रस रूप वो पौधेरिक भी नहीं है, वो उसका गुण रूप भी नहीं है, वो द्रवेंद्रिय रूप भी नहीं है, और वो स्वयं भी वो रसना इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आएगा। निश्चय न यह ग्राहको न भवती इति सर्वत्र संबंधनीय, यानी निश्चय से ये ग्राहक नहीं होता, ग्राहक ने जानने वाला नहीं होता, ऐसे सर्वत्र संबंध सभी जगह इस तरह से संबंध जोड़ना चाहिए। तथा रसास्वाद परिच्छेदकम क्षायोपशमिकम यद भावेन्द्रियम तद्रूपो न भवति, क्या कहते हैं, ये तो रस का आस्वाद यानी रस का ज्ञान करने वाला क्षायोपशमिक जो भावेन्द्रिय है उस रूप तो जीव है कि नहीं, तो उतने मात्र तो नहीं, उस रूप भी वो नहीं होता। तेन एव भावेन्द्रियेन कर्णभूतेन परेषां स्वस्य वा रसवत् परिच्छेद न भवति, पुनः तेन एव भावेन्द्रियेन रस परिच्छेदको न भवति। इसका जरा मैं उसमें, मुझे वो बुक देना, उसमें क्या अर्थ किया है मुझे जानना है, वो ऊपर भारी है, उसको निकालना पड़ेगा अलग से, वो ऊपर की बुक्स। हाँ समझ लो,
गाता 126-27
यहाँ हमने पहले क्या बताया, रसगुण सहित पुद्गल द्रव्य रूप जीव नहीं है, रसगुण मात्र जीव नहीं है, रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा नामक द्रवेंद्रिय रूप भी जीव नहीं है, ये तो देखा था हमने। जिह्वा इंद्रिय के साधन द्वारा परक या निज का रस की तरह ज्ञान नहीं होता, निश्चय से स्वयं द्रव्य इंद्रिय से रस ग्रहण नहीं होता है। निश्चय से जो ग्राहक नहीं है ऐसा सर्वत्र संबंध लगा लेना चाहिए। अब ये भावेन्द्रिय की बात है। इसी प्रकार रसास्वाद को जानने वाली क्षौपशमी जो भावेन्द्रिय है उस रूप जीव नहीं है, और उसी भावेन्द्रिय के साधन द्वारा पर का या अपना रसपने का ज्ञान नहीं होता, और उसी भावेन्द्रिय के द्वारा रस का ज्ञान नहीं होता। कुछ खास अलग से नहीं बताया उन्होंने। हाँ अभी हम आगे बढ़ते हैं। तथैव सकल ग्राहक अखंड एक प्रतिभासमय यत केवल ज्ञानम तद्रूपत्वात् पूर्वोक्तम रसास्वादकम यद भावेन्द्रियम तस्मात् कारणभूतात् उत्पन्नम यत कार्यभूतम रसपरिच्छित्य मात्रम खंड ज्ञानम तद्रूपो न भवति। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, और वो क्या कहते हैं, संपूर्ण सभी ज्ञेयों को एक साथ युगपत जान लेता है, इसलिए कहते हैं सकल ग्राहक। सकल ग्राहक ने जो सर्वज्ञ शक्ति जो है संपूर्ण पदार्थों को एक साथ युगपत जानने का उसका स्वभाव है, ग्राहक ने जानने वाला सबको एक साथ जानने वाला स्वभाव है उसका। तो सकल ग्राहक अखंड प्रतिभासमय, प्रतिभा से नहीं ज्ञान, अखंड ज्ञानमय होने के कारण जो केवल ज्ञान है तद्रूपत्वात् जीव कैसा है तो केवल ज्ञान रूपी है, और वो अखंड है, अखंड ज्ञान रूप है। और ये भावेन्द्रिया कैसी है, खंड खंड ज्ञान रूप होती है। इसलिए पूर्वोक्त मैंने ऊपर बताया हुआ रसा स्वादकम यद भावेन्द्रियम, यानी रस को जानने वाली जो भावेन्द्रिया है तस्मात कारणात कारणभूतात उत्पन्नम, यानी वो भावेन्द्रिय यानी वो सूक्ष्म ज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ ये जो कार्य रूप ऐसा जो रस परिचित यानी रस के जानने रूप जो ज्ञान है वो खंड ज्ञान है। तद रूपो न भवति, यानी जीव है वो उस रूप नहीं होता, खंड ज्ञान रूप नहीं होता, उसके पर्याय में अपन को जीव अखा वो खंड ज्ञान रूप नहीं हुआ है, क्योंकि वो अखंड एक प्रतिभासमय जिसको कहेंगे ऐसा उसका स्वरूप है। तथैव च रसम जानाति रस रूपेण तन्मयो न भवति इति अरसः, उसी प्रकार वो रस को जानते हुए रस रूप तन्मय नहीं होता, उसमय नहीं होता, ये जीव की विशेषता है, वो सभी द्रव्यों को जान लेता है, वो स्वयं ज्ञानमय रहते हुए सभी को जानने का उसका स्वभाव है। रस को जानते हुए ज्ञान रसमय नहीं होता, वर्ण को जानते समय ज्ञान वर्णमय नहीं होता, तत्मय नहीं होता, इसको कहते तन्मय नहीं होता। अनेन प्रकारेण इसी प्रकार से यथा संभव रूप गंध शब्द विषयेषु तथा च अध्याहारम कृत्वा स्पर्श विषये च योजनीयम्, यानी जैसे हमने यहाँ रस के ऊपर बताया है ऐसा ही वो लगाते ना, देखो अरूप अरूप अगंध अशब्द वगैरह बताया था अस्पर्श सबके बारे में, इसी पद्धति से सारे ही बोल उसमें घटित करना चाहिए। अव्यक्तम अभी अव्यक्त की बात बता रहे हैं, यानी उन्होंने अरस की बात पूरे खोलकर बताई, जैसा अरस बताया है वैसा ही अरूप गंध अशब्द और अस्पर्श सबको जान लेना चाहिए। ऐसा ही उसमें भी जानना चाहिए अध्याहार है ने उसके ऐसा ही समझना, उसके अध्याहार करना है ने जान लेना, वो फॉलो करना उसमें उसको लगा लेना। अध्याहार कृत्वा ने उसी प्रकार से वो सारा अप्लाई करके अवत्तम यथा क्रोधादि कषाय चक्रम मिथ्यात्व रागादि परिणत मनसाम निर्मल स्वरूप उपलब्धि रहितानाम व्यक्तिम आयाति तथा परमात्मा न आयाति इति अव्यक्तः। क्या कहते हैं ये, कहते हैं क्रोधादि कषाय चक्र जो है क्रोध मान माया लोभ आदि सभी जो कषाय है वो हमारे ख्याल में आती है कि नहीं, व्यक्त है, तो किसके लिए कह रहे हैं कि मिथ्यात्व रागादि परिणत मनसाम, मिथ्यात्व रागादि रूप जो परिणत हुए हैं ऐसे कौन निर्मल स्वरूप उपलब्धि रहिता नाम, निर्मल स्वरूप की उपलब्धि से रहित ऐसे जो जीव है और मिथ्यात्व रागादि रूप जो परिणत हुए है उनके लिए कषाय चक्र जो है वो व्यक्ति मायाति यानी वो व्यक्त है उनके लिए, तथा परमात्मा न आयाति इति अव्यक्तः, उनके वो परमात्मा उसको अभी व्यक्त नहीं हुआ है इसलिए उसको अव्यक्त कहा, उनके लिए अव्यक्त है, सबके लिए टोटली सर्वथा अव्यक्त ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो तो केवल ज्ञान तो जानेंगे ना उसको। हाँ अभी जिसको उपलब्धि नहीं उसके लिए वो अव्यक्त है। असंठानम वृत्त चतुरस्र आदि सकल संस्थान रहित, वृत्त ने गोलाकार चौकोर आदि किसी भी आकार से रहित, ये जीव का ऐसा कोई त्रिकोणी चौकोनी गोल ऐसा कुछ आकार नहीं पाया जाता है, ऐसे सर्व संस्थानों से रहित अखंड एक प्रतिभासमय परमात्म रूपत्वत, वो अखंड एक प्रतिभासमय ज्ञान में आवे ऐसा स्व संवेदन से ज्ञान में आता है ऐसा होने से पौद्गलिक कर्मोदय जनित समचतुरस्रादि षट संस्थान रहितत्वात् असंस्थानम, यानी जो उसके जो अभी जो जीव का भी अभी आकार पाया जाता है परंतु वो कौन सा है तो कर्मोदय से उसका यह आकार हुआ है, क्योंकि जीव और कर्म एक साथ बंधे हुए तो है ही है और कर्म के उदय में उसका वैसा वैसा आकार पाया जाता है, तो कहते हैं वो तो जीव का वो अपना आकार नहीं है, इसलिए जो छह संस्थान बताए हैं उससे जीव रहित है, इसलिए उसको असंस्थान कहा, असंठान कहा ना ऊपर। अलिंगक ग्रहणम यद्यपि अनुमानेन लक्षणेन परोक्ष ज्ञानेन व्यवहारनेन धूमात अग्निवत शुद्धात्मा वद अशुद्धात्मा हो जाएगा, ज्ञायते अशुद्धात्मा की बात है। क्या कहते हैं हम जीव को अनुमान से जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? हाँ, अभी वो विषय चल रहा है ना जिसमें राग द्वेष हो रहा है, अभी अपने पंचासिकाए में कल बात हुई जो सुख दुख की बात चल रही है, जो भय से भागते हुए ख्याल में आते हैं वो जीव है और बाकी पुद्गल है, ऐसा हम जानते तो अनुमान से हम जानते कि यहाँ जीव है तो अनुमान से जान सकते हैं उसको। तो जो अनुमान से जाना जाता है यानी यद्यपि चूंकि अनुमान से भी जीव को जान सकते हैं, लक्षण से जीव को जानते हैं, परोक्ष ज्ञान से भी जीव जानने में आ रहा है, व्यवहार नय से धुआं अग्निवत यानी जैसे हमने धुआं देखा तो धुआं देखकर हम अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे जीवों का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो कहते वो अशुद्धात्मा ज्ञायते तथापि रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान समुत्पन्न परमानंद रूप अनाकुलत्व सुस्थित वास्तव सुखामृत जलेन पूर्ण कलशवत सर्व प्रदेशेषु भरितावस्थानां परम योगिनां यथा शुद्धात्मा प्रत्यक्षो भवति तथा इतरानां न भवति इति अलिंग ग्रहणम्। अलिंग ग्रहण किसी भी चिन्ह के द्वारा वो अशुद्धात्मा जो है वो तो भले वो अनुमान से वगैरह जान रहे हैं परंतु शुद्धात्मा वो अन्य किसी चिन्ह से जाना नहीं चाहता, तो उसके लिए कितनी कितनी बातें बताई। देखो फिर से पहले में पहले कहते हैं यद्यपि अनुमान से लक्षण से परोक्ष ज्ञान से व्यवहार नहीं से धूम से अग्नि को जानते वैसे अशुद्धात्मा जानने में आ जाता है, तथापि रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न ऐसा जो परम आनंद रूप अनाकुलत्व सुस्थित वास्तविक जो सुखामृत जल से पूर्ण कलशवत पूर्ण कलश के समान जैसे सुखामृत से भरे सुखामृत रूपी जल से पूर्ण कलश है उसके समान सर्व प्रदेशों में आत्मा के सर्व प्रदेशों में भरितावस्था से परम योगी जो है मुनिराज है उनके जैसे शुद्धात्मा प्रत्यक्ष होता है वैसा इतर लोगों के लिए वो नहीं होता, इसीलिए उसको अलिंग ग्रहण कहा। परम योगी ने वो केवल ज्ञानी को लिया क्या, शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष बताया है ना। चेदना गुणम यत सर्वाणि चराचराणि विविध द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायानपि भूत भावी भवता सर्वान सदा सर्वदा जानीते युगपत प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इति उच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः इति वृत्त कथित लक्षणेन। अभी यहाँ केवल ज्ञान का लक्षण बताया है, यहाँ जिनेन्द्र भगवान जो वीर जिनेन्द्र है उनको नमस्कार किया है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है जो सर्व चराचर अनेक द्रव्यों को उनके गुणों को पर्यायों को भी, वो पर्याय कैसे है भूत भावी और भविष्य वाले सर्व को सदा इन्हें हमेशा सर्वदा जानते हैं, कैसे जानते हैं युगपत और प्रतिक्षण, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वर जो वीर यानी महावीर भगवान है उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसा जो वृत्त में उसका लक्षण बताया है केवल ज्ञान संगेन शुद्ध चेतना गुणेन, केवल ज्ञान जिसका नाम है ऐसे शुद्ध चेतना गुण से, हमेशा हमने देखा था कि उसको गुण कहने में आता है ना, यहाँ पर गुणेन युक्तत्वात् उस गुण से युक्त होने से चेतना गुणश्च यह जो चेतना गुण है जान जीवम उसी को जीव जानो हे शिष्य तमेव गुण विशिष्टम शुद्ध जीव पदार्थम जानी ही इति भावार्थः। हे शिष्य उसी को यानी उस गुण विशिष्ट को ही शुद्ध जीव पदार्थ जानो, ऐसा इसका भावार्थ है। यानी पहले में बोले अरस रूपी वगैरह वो सभी बताए उन्होंने, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं है, फिर अव्यक्त कहा, असंठान कहा, अलिंग ग्रहण कहा। अभी इनको तो अलग अलग ग्रंथों में अलिंग ग्रहण के ऊपर बहुत विस्तार से प्रवचन हुए हैं। अमृत चंद्राचार्य ने भी उसमें से 20 बोल निकाले है ना। अब यहाँ क्या क्या बताते हैं वो देखेंगे।
देखो पेज नंबर 58 पर जो समय व्याख्या है उसका अनुवाद गुजराती में है, उसको हम पढ़ रहे हैं। जीव पुद्गलना संयोग मापन तेमना भेदना कारणभूत स्वरूप नु आ कथन छे। यानी क्या कह रहे, जीव और पुद्गल, पुद्गल में बाकी 5 भी लेना, लेकिन यहाँ विशेष रूप से पुद्गल की बात है। इनका संयोग है, उनको एकत्र है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि उनका जो अलग अलग स्वरूप है उस अलग अलग स्वरूप का यहाँ कथन करने में आने वाला है। क्या कहा फिर से, जीव पुद्गलना संयोगमा पण तेमना भेदना कारणभूत स्वरूप एनु आ कथन छे। अर्थात जीव ने पुद्गलना संयोगमा पण जे वडे तेमनो भेद जाणी शकाय छे एवा तेमना भिन्न भिन्न स्वरूपनु आ कथन छे। ये बात समझ में आई दक्षा बेन? यानी दोनों अलग अलग है, संयोग में है, फिर भी उनके अलग अलग यहाँ पर बात बताई जा रही है। शरीर अने शरीर ना संयोग मा ओ शरीर अने शरीरी ना संयोग मा शरीर अने पुद्गल और शरीरी अने जो शरीर को धारण करता है ऐसा आत्मा जीव द्रव्य, शरीर अने शरीरी शरीरी ना संयोग मा जे खरे खर स्पर्श रस गंध वर्ण गुणवाळु होवाने लीधे सशब्द होवाने लीधे तथा संस्थान संघात आदि पर्यायो रूपे परिणत होवाने लीधे इंद्रिय ग्रहण योग्य छे ते पुद्गल द्रव्य छे। अभी पुद्गल द्रव्य किसको कहा तो इतनी सारी बातें बताई कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है और कैसा है, सशब्द है, उसी के साथ संस्थान संगात आदि पर्याय रूप भी, पर्याय रूप से भी जो परिणत हुए हैं और बाकी सब कैसे हैं, इंद्रिय ग्रहण योग्य है ते पुद्गल द्रव्य छे। देखो अगर आपको याद होगा तो हमने पहले नक्की किया था अपनी तरफ से कि पुद्गल किसे कहना, तो कहते जो आंखों से दिखता है वो सारा पुद्गल है। ये बात नक्की हो गई क्योंकि उसमें वर्ण गुण है। अब क्या कहते हैं, जो सभी इंद्रियों से जाना जाता है वह भी पुद्गल है। यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक आगे, क्योंकि क्या है कि पुद्गल पहले कहने से लोगों को पुद्गल का ही अर्थ समझ में नहीं आता है। यानी पुद यानी जुड़ना और गल यानी गलना, यानी जिसका स्वभाव जुड़ना भी है और गलना भी है, बिखरना भी है, उसको पुद्गल कहेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है वो सारा पुद्गल है। और हमने वैसे कायदे से उसका अगर हमको परिभाषा उसकी देखनी है तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि गुण है वह पुद्गल है, ये हमने देखा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जे खरेखर स्पर्श रस गंध वर्ण गुणवाणु होवाने लीधे, यानी उसके गुणों की बात की। और क्या कहते हैं, सशब्द यानी शब्द सहित होने लीजिए तथा यहाँ तो गुण की बात की, अभी पर्याय की बात करेंगे। संस्थान संघात आदि पर्याय रूपे परिणत होने लीजिए और आगे क्या कहा, इंद्रिय ग्रहण योग्य छे। तो इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है उसको पुद्गल कहेंगे। अने जे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण विनानु होने लीधे अशब्द होवाने लीधे अनिर्दिष्ट संस्थान यानी कोई विशिष्ट संस्थान या आकार वाला नहीं है होवाने लीधे तथा अव्यक्तत्वादि पर्याय रूपे परिणत होवाने लीधे इंद्रिय ग्रहण योग्य नथी ते चेतना गुणमय पणाने लीधे रूपी तेमज अरूपी अजीवोंथी विशिष्ट भिन्न एवं जीव द्रव्य छे। अभी देखो इन्हें अजीव को दो प्रकार से बांट दिए यहाँ पर, एक अजीव कौन सा है तो रूपी है और एक अजीव कौन सा है तो अरूपी है। तो किस में किसको रखेंगे अपन, रूपी में किसको रखेंगे और अरूपी में किसको रखेंगे? देखो देखो आपको ये बताना है कि रूपी और अरूपी दो प्रकार के अजीव बताए, तो रूपी अजीव यानी कौन और अरूपी अजीव यानी कौन, ये आपको समझाना है। बहुत अच्छा, रूप ख्याल में, क्योंकि ये भी तो अजीव आदि कहा ना, तो ये सब उसमें आ गए। तो आपने बराबर उत्तर दिया, कहा कि रूपी पुद्गल में रूपी अजीव में पुद्गल को लेंगे और अरूपी अजीव में धर्म द्रव्य काल द्रव्य आदि सब बातें लेंगे। देखो हम जो पढ़ते हैं उसका हमें भाव भाषण होगा तो ही हमको जो आगे कहने वाली बात है वो ख्याल में आएगी। रूपी अजीव थी विशिष्ट भिन्न एवं जीव द्रव्य छे। आ रीते अहीं जीव अने अजीवनो वास्तविक भेद सम्यक ज्ञानीओना मार्गनी प्रसिद्धि अर्थे प्रतिपादित करवामा आयो छे। यानी जिनको सम्यक ज्ञान होने की आवश्यकता लगती है उनके लिए बात बताई है। आ रीते आपका पूछना है रूपी अजीव और अरूपी अजीव में। देखो देखो पहले में पहले हम छह द्रव्य है, उन छह द्रव्यों को रूपी द्रव्य कितने हैं और अरूपी द्रव्य कितने हैं ऐसा अगर हम विचार करते हैं तो रूपी सिर्फ उद्गल द्रव्य है और अरूपी में पांच द्रव्य आते हैं, उसके साथ जीव भी है। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं चेतन द्रव्य कितने और अचेतन द्रव्य कितने हैं, तो चेतन द्रव्य तो एक सिर्फ जीव द्रव्य है और अचेतन द्रव्य में जीव छोड़कर अन्य पांच द्रव्य अचेतन है। अचेतन है यानी वो अजीव है। अभी जब हमने अजीव तत्व को देखा तो यहाँ क्या कह रहे हैं अजीव में किसको लेना, तो कहते हैं रूपी अजीव और अरूपी अजीव। तो रूपी अजीव में यहाँ हमने पुद्गल द्रव्य को ही लिया है और अजीव अरूपी अजीव में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य और आकाश द्रव्य इनको हमने अजीव कैसे अरूपी अजीव ऐसा लिया। समझ में आया? हाँ, आ रीते अजीव पदार्थनो व्याख्यान समाप्त थयु। यानी यहाँ पहले जीव का समाप्त किया अभी अजीव का समाप्त किया। अभी इस पर गुरुदेव श्री जो अपने को विशेष व्याख्यान बताएंगे उसको हम देखेंगे। जीव पुद्गल नो संयोग देखाय छे, एक क्षेत्र व गाह संबंध छे। दक्षिण एक क्षेत्र व गाह यानी आप समझती हैं? हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा। यहाँ किसकी किसकी बात चल रही है? जीव और पुद्गल की। और इसके लिए उन्होंने अभी एक उदाहरण भी दिया था, क्षीर नीर विवेक जिसको हम कहते हैं मराठी में। यानी क्षीर और नीर एक साथ होने से इसमें से पानी कौन सा है और दूध कौन सा है ऐसे झटपटक से हमारे ख्याल में नहीं आता है। वो दोनों ही एक ही क्षेत्र में है लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल को संयोग जो दिख रहा है अपने को कैसा है, तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध छे पन परस्पर लक्षण भेद छे। यानी जीव के लक्षण जुदे हैं और पुद्गल के लक्षण जुदे हैं। આ 127મી ગાથા સમયસારમાં 49મી, પ્રવચનસારમાં 172મી, નિયમસારમાં 46મી અને ભાવપાવડમાં 64મી. યાને એ પંચાસ્તિકાયમાં 127 નંબર કી ગાથા. યાને એ દેખો દેખો, પંચાસ્તિકાય હો ગયા, સમયસાર હો ગયા, પ્રવચનસાર હો ગયા, નિયમસાર હો ગયા, और अष्टपावड़ी यानी भाव पावड़ में हो गया. इसी तरह हमने आपको पहले बताया था कि पांचों ही परमागम जिसको हम कहते हैं, उनमें यानी जो कुंद कुंदा आचार्य ने जो लिखे हुए जो मूल पांच परमागम है, उसमें सभी में यह गाथा है. जीव पुद्गलना संयोगमा सम चतुरस्त्र आदि छह प्रकार ना संसार संस्थान चे अथवा વજ્રર્ષ નારાચ આદિ સહનન છે, તે બધા જડ છે, તે જીવની પર્યાય નથી. પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ અને બે ગંધ તથા શબ્દ ઉદ્ગલજન્ય ગુણો તથા પર્યાયો છે. આ ભાષા બોલાય છે તે જડ છે, જીવથી તે બોલાતી નથી. કોઈ પૂછે કે છદ્મસ્થની ઈચ્છા છે માટે વાણી બોલાય છે એવો મેળ તો દેખાય છે. સમાધાન, ભાષા એ પ્રશ્ન ખ્યાલ મેં ને, હમ ઈચ્છા કરતે એટલે બોલ સકતે હૈ ના, એસા પૂછ રહે. ભાષા જડતી થયેલ છે, જીવતી થયેલ નથી. જડની અવસ્થા જડના કારણે છે ને જીવના પરિણામ જીવના કારણે છે. કોઈને લીધે કોઈ નથી. यानी यहाँ जीव इच्छा करता है और वहाँ सहज रूप से पुद्गल में उस रूप से भाषा निकलती है. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि इच्छा करे और वहाँ भाषा निकले, ऐसा होता है तो लगता है कि नहीं नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं तो कौन के बाजू वाला बोल रहा है, क्या दिख नहीं रहा आवाज़ यहाँ से आ रही है, ऐसा लोग थोड़ा सा नाराज होकर बोलते हैं. लेकिन क्या करे, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि इच्छा है लेकिन बोला नहीं जाता है, और इच्छा नहीं है फिर भी बोला जाता है. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये तो पुद्गल का ही कार्य है, जीव का नहीं है. तो क्या क्या इन शॉर्ट क्या बताया, कोई ने लीधे कोई नथी, यानी जीव के कारण से भाषा नहीं और भाषा के कारण से जीव बोले इच्छा करता है ऐसा नहीं. જીવ કેવો છે, જીવમાં રસગુણ નથી, વર્ણગુણ નથી, ગંધ નથી, અવ્યક્ત છે, જ્ઞાન દર્શન ગુણવાળો છે, શબ્દ પર્યાય રહિત છે, ઇન્દ્રિયાદિ ચિહ્નોથી જણાય એવો નથી. એને કિસી ભી ઇન્દ્રિયો કે માધ્યમ સે આત્મા કા અનુભવ નહીં હો સકતા હૈ, ઇસલિયે આત્મા ઇન્દ્રિયાતીત હૈ, એસા કહેને મેં આતા હૈ. ઇન્દ્રિયાદિ ચિહ્નોથી જણાય એવો છે, આત્માના કારણે ઇન્દ્રિયોથી જણાય એવો નથી, આત્માના કારણે શબ્દ થતો નથી, તેમજ ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જણાય તેવો નથી, રાગને પુણ્યથી પણ જણાય તેવો નથી.
देखो यहाँ क्या लिखा है, इंद्रियों थी आत्मा जनाए ते वो नथी, और उसके ऊपर के लाइन में लिखा था इंद्रियादि चिन्हों थी जनाए वो नथी, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ मिली भाई, और नीचे जड़ इंद्रिय कहो या इंद्रिय ज्ञान से भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा. इंद्रियादि चिन्ह ने जैसे शरीर के चिन्ह, इंद्रिया ये जो द्रव्य इंद्रिय वो तो पौद्गलिक है, शरीर के चिन्ह है, ऐसे आत्मा को कोई चिन्ह नहीं है इंद्रियों वाला. और इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को जान भी नहीं सकते, दो अलग अलग बातें ना इसमें.
हेलो. क्या कहा? आवाज मोटी हो। नीचे से थर्ड लाइन, राग अने पुण्य थी पण जणाए तेवो नथी। यानी हम देखो, यहाँ जो बार बार कहा जाता है कि राग करने से यानी शुभ भाव करने से आत्मा का अनुभव होवे, ऐसा नहीं है। तो ये बात यहाँ अच्छी तरह से समझाई है कि राग अने पुण्य थी पण जणाए तेवो नथी। पहली बात बताई इंद्रियों से जाना नहीं जाता है, और यहाँ कहते राग तथा पुण्य दोनों ही बात है, तो वो जाना नहीं जाता। मन योगनी क्रिया थी के बीजे इंद्रियनी क्रिया थी जणाए तेवो नथी। यानी जिसको हम कहेंगे मनातीत है, मन के द्वारा आत्मा को जाना जाए ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान थी जणाए तेवो छे। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी कैसा है कि जब यह मति और शुद्ध ज्ञान जो है वह तो परोक्ष ज्ञान है। यानी उसमें क्या है कि वह ज्ञान होने के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता रहती है निमित्त रूप से, लेकिन निमित्त कार्य कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। लेकिन आत्मा का अनुभव जब मतिशुद्ध ज्ञान से होता है तो वहाँ बीच में ये मीडिया जिसको हम कहते हैं, कोई बीच में निमित्त सहायभूत नहीं होता है, डायरेक्ट आत्मा को वह जाता है, तो उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान थी जणाए तेवो छे, वळी तेने जड़नो आकार नथी पण पोतानो आकार छे। यानी जो जीव है इसको अभी हम कहते हैं ना कि ये शरीर जितना आकार है वो आत्मा प्रदेशों का आकार है, लेकिन सिद्धों का उनको तो शरीर ही नहीं है, तो उनका वो ओरिजिनल आकार स्वभाव। वळी तेने जड़नो आकार नथी पण पोतानो आकार छे। ये पोतानो आकार छे किस कारण से पोतानो आकार छे आप बता रहे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये बता रहे हैं पोतानो आकार छे, असंख्यात प्रदेश ही पोतानो आकार छे, एनु कारण शू? वीरेश भाई आप बताएंगे कौन सा? द्रव्य तो नहीं, देखो ये जो बात है ना बहन दक्षा बहन, ये सारी लघु जीवन सिद्धांत प्रवेशिका में बातें आती। अपना जब ये अभी इतवार को चलेगा ये सब, ये खाली पढ़ने से क्या, ऐसा क्यों, ऐसा अपने मन में प्रश्न उठना चाहिए। यहाँ जो कह रहे हैं कि वड़ी तेने जड़नो आकार नथी पण पोतानो आकार छे, तो पोतानो आकार छे तो क्या कारणे पोतानो आकार छे? तो दरेक द्रव्यमां प्रदेशत्व नामनो गुण छे, एने सामान्य गुण कहेवाय छे, एटले प्रत्येक द्रव्यनो आकार होवो जोईए। तो हमने देखा था जीव द्रव्य का आकार कितना है, तो असंख्यात प्रदेशी है। काल द्रव्य का आकार, काल द्रव्य का आकार एक प्रदेशी है, भूल गए आप? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का आकार असंख्यात, कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना, ये भी बात आने वाली है। बावत अनादि मिथ्या वासना थी आत्मद्रव्य, मिथ्या वासना ने मिथ्या मान्यता के कारण से आत्मद्रव्य उद्गलना संबंधे पोताना विभाव ने अज्ञान ना कारणे शरीर ने इंद्रियों ने पोताना माने छे। यानी मिथ्यात्व के कारण से और अज्ञान के कारण से ये शरीर जो है और ये इंद्रिया है वो सब अपने हैं ऐसा मानता है। अभी हमारे पास एक चेन्नई से एक भाई साहब आए थे, बोलते मेरे शुद्ध ज्ञान में प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? मेरे को सुनाई कम देता है। बोले
वो भाई बोले कि आप बोले?
वो बोले और उन्होंने अपनी सारी सीडीज ली है।
तो
श्रोत्रेंद्रिय का प्रॉब्लम है बोलने के वजह शुद्ध ज्ञान यानी ये क्या है? मैं क्या बताना चाहता हूँ, अनादि मिथ्या वासना थी आत्मद्रव्य पुद्गलना संबंधे पोताना विभाव अने अज्ञान ना कारणे शरीर ने इंद्रियों ने पोताना माने छे। ये क्यों कि भाई उसको मैं जुदा हूँ और ये शरीर जुदा है, इंद्रिय जुदे है, ये मालूम ही नहीं है। क्यों कि अनादि से मिथ्यात्व उनके साथ रह रहे। जैसे हमने बहुत बार पूछा था, आज क्या नाम है, लक्ष्मी बुन, आज वो बहन आई थी ना सुबह में, यहाँ बैठी थी, वो उसकी बेटी भी आई थी वहाँ शास्त्र स्वाध्याय में, और उसका हस्बैंड भी आया था पूना में। तो हमने पूछा उस बेटी को, फर्स्ट टाइम आई थी, कि तेरे पिता काले हैं क्या गोरे हैं? क्योंकि माँ तो गोरी है वो तो समझ सकते हैं, वो थोड़ी सी सावली थी और पिता एकदम गोरा था। तो उसको, मेरे पिताजी गोरे हैं, बोला देखा, यानी गोरा या आत्मा है या शरीर है, यानी शरीर को ही मैं हूँ ऐसा माना है। और हम यही करते हैं, मैं जाड़ा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं ठिंगड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ। अभी ऐसा बोलते हैं लोग कि मोटा भाई खान बहु वधी गई छे, संभाल जो। ये हम छोटे थे, सांभलो, हम जब छोटे थे तो नवरात्रि में यहाँ सोसाइटी में प्रोग्राम होता था, वहाँ भी उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हमेशा गाना गाता था, ये फांद फुटना जाना जब तक 25 समय लड्डू न खाऊं। वो कितना, अभी उसको 40-50 साल हो गए, मुझे गाना बराबर याद है। वो समय गाना था ना, दूसरा गाना था ना पिक्चर का, उसके ऊपर उसने अपना गाना बनाया था। यानी हमें बाकी छोड़ो बातें, हमको अनादि से मिथ्यात्व के कारण से शरीर रूप ही मैं हूँ, क्या कहते हैं, इंद्रिया रूप ही मैं हूँ, क्या करे साहब, अभी बुढ़ापा आ गया, आंखों को दिखता नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, सुनाई नहीं देता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो बातें मेरी है, इंद्रिया मेरी है, इंद्रिया का मालिक मैं हूँ, इंद्रिया रूप ही मैं हूँ, ऐसा हम मानते हैं, वो मिथ्यात्व के कारण है। लेकिन आत्मा को कहाँ कान होता है, जानने का कैपेसिटी है उसको। चलो आगे, सेकंड लाइन, देव गति मां जाए तो देव राशि क्या हो रहा है, देव गति मां जाए तो देव शरीर आदि ना प्रकार जेवा देखाय तेने पोताना मानी वासना कर्या करे छे। पूर्व कर्मना निमित्ते जेवू शरीर आंख कान नाक कंठ वगैरे मळे ते जाने के मारे लीधे मळ्या छे ने ते में मारा कब्जा मां छे एम मानी मिथ्या वासना कर्या करे छे ने तेमा अहम भाव करे छे। शरीर चालता हूँ चालियो माने छे, पैसा नजीक आवता आ पैसा मारा तथा आ दिकरा मारा गुरु मारा एम अज्ञान भाव करे छे। देवनु शरीर मळता हूँ देव थयो, मनुष्य शरीर मळता हूँ मनुष्य थयो एम मानी अहम भाव सेवे छे। ते मिथ्या भावनी प्रवृत्ति पोतानी पर्यायमा पोताना कारणे थाय छे, छता परने लीधे भ्रांति थई एम मानी रह्यो छे। यानी हमें कोई अच्छा गुरु मिला ही नहीं समझाने वाला, तो हमारा मिथ्यात्व तो नहीं गया, हम क्या करेगा, ऐसा करके वो एकदम ये होता है। क्या कहा फिर से, अभी मुझे क्यों याद आया, हमारी सुशीला बहन यहाँ से गई थी कहाँ, उनके गांव में, तो वहाँ जाके भड़क के आई वो। तो क्या वो कह रहे, देखो यहाँ ये बता रहे, परने लिदे भ्रांति थई छे एम मानी रहे छे। तो इसका भी, इसकी भी मान्यता है कि वहाँ सभी ऐसा उपदेश देते, सभी ऐसा ही करते, सभी ऐसा करते। अरे पर वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको निमित्त भी ऐसे मिलने वाले हैं। उसने मुझे पूछा था कि आज तक हमारे महाराज जो है, अभी आज की बात नहीं, 18-20 साल पहले की बात है, कब की, 20 साल, हाँ, क्या बोली कि हमारे महाराज ने ऐसा क्यों नहीं बताया। अब मैं क्या बोलूं भाई, मैंने कहा तुम थोड़े दिन सुनो, अपने आप समझ जाओगे। पहले में तो उनको मालूम होना चाहिए तो बताएंगे, और तुम्हारी समझने की कुवत योग्यता उस समय नहीं थी, इसलिए जो सामने से जो बोला वो आपने माना। बहुत नाराज हुई थी मेरे पे, लेकिन अभी दूसरे पे नाराज हो रही है। संयोगो खसी जाए छे, विकार टड़ी जाए छे। ये लक्ष्मीबुन, ये हमारी क्या नाम है, सुशीला का एग्जाम्पल देने में मुझे मजा आता है। यानी मैं अमेरिका में भी उसकी बात बता सकता। संयोगो खसी जाए छे, विकार टड़ी जाए छे, एकलो चैतन्य स्वभाव रही जाए छे, ते बात अज्ञानी ने बेचती नथी, यानी एक्सेप्ट नहीं होती। वड़ी कोई कहे कि हाले चाले ते जीव, बोले ते जीव, एम मानी बैठो छे। कोई समाज अथवा मानसोए वखान करिया कि अमुक भाई बहु सारा छे, अज्ञानी ने ते बात रुचि गई, हवे समाजनी दृष्टिए केम सारो देखाऊं, ने ते बधा मने सारो कहता रहे, एनी पेरवीमां अज्ञानी जीव रहा करे छे, आ मिथ्या वासना छे। अब या ये वाक्य सुनने के लिए मनीषा बेन नहीं है। अब कौन से दिन कौन सा क्या आएगा वो थोड़ी बता सकेंगे, लेकिन आता तो है हमेशा। क्या कहा, ये ऐसा ही लगता है, देखो हवे समाज नी दृष्टिए केम सारो देखाऊं, ने बधा मने सारो कहता रहे, एनी पेरवीमां, पेरवी यानी कोशिशमां, अज्ञानी जीव रहा करे छे। वीतराग सर्वज्ञ देवे बन्ने द्रव्योना लक्षण जुदा कया छे, जड़नु लक्षण चेतनपणु छे। डोळ्यात पाणी आले, जडनું લક્ષણ અચેતનપણું છે ને જીવનું લક્ષણ ચેતનપણું છે, બંને ભિન્ન છે છતાં મારા વિના શરીર ચાલે નહીં, વાણી બોલાય નહીં, એવી મિથ્યા વાસના ચાલુ રાખી છે ત્યાં સુધી અધર્મને સેવી રહ્યો છે, આ કુટુંબી મારા છે એમ ભાષા બોલાય, તેથી કાંઈ તે મારા થઈ જતા નથી। क्योंकि एक ही बात हमारे ध्यान में रखने जैसी है, जो मेरे से जुदा होता है वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं है। ज्ञान आपसे जुदा होगा कि नहीं, अरे अगले भव में ज्ञान रहेगा, उसकी पर्याय ही ना दिखोगी, लेकिन राग गया सो गया, यानी राग रूप मैं नहीं हूं, ये बात नक्की होती है। यहां क्या कह रहे हैं कि आ कुटुंबी मारा छे, तो मैं जब जन्मा जब से कुटुंबी थे क्या, अभी शादी करके कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके वो कुटुंबी हो गए, तो वो उसके थोड़ी हो सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। सेकंड लाइन, शरीर शरीर ना कारणे, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है वाणी, वाणी ना कारणे छे, शरीर शरीर ना कारणे छे, कर्म कर्मना कारणे छे, पर पदार्थो शरीर के कर्म काई राग करावता नथी, तेमज ज्ञान करावता नथी। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई है। यहाँ पर एक बात बता रहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। क्या हमने ऐसा ही माना है कि पर से मुझे ज्ञान होता है, वो मिथ्यात्व तो अभी समझ में आए, लेकिन पर से मुझे राग द्वेष होते हैं ये माना अभी तक छोड़ा नहीं हमने कि भगवान को देखने से हमारे में एकदम अच्छे परिणाम होते हैं, ऐसा हमने माना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता भगवान को देखकर अच्छे परिणाम होते तो मंदिर में चोरी नहीं होती थी। अभी हम छिंदवाड़ा में गए थे, वहां तो ऐसी 10-12 फुट की ऊंची मूर्ति है और उसके ऊपर इतना बड़ा ऐसा चांदी का छत्र है, 1-2-3 ऐसे। तो वो चोर वो क्या बोलते हैं मूर्ति के ऊपर चढ़ गया और उसने निकाल के ले गया, तो उसके पैर वो शरीर में आए हैं, मतलब यानी मुझे
पैर के निशान,
पैर के निशान ही। वही तो मुझे ये कहना है कि अगर भगवान को देख के सर सबके परिणाम अच्छे होते थे, यानी पर से अपने राग द्वेष के परिणाम होते नहीं, राग द्वेष के परिणाम अपने से अपने में हो रहे। जैसे ज्ञान भी पर से नहीं होता है, मेरे ज्ञान का परिणाम मेरे से होता है, ये तो बात हम सीख गए, लेकिन आज तक ये नहीं माना क्या करे। अरे घर में हमको फेवरेबल वातावरण नहीं है, उसके कारण हमको ये तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। हम पर के कारण दुखी नहीं, हम अपने स्वयं के कारण से दुखी है, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। देखो पर पदार्थों शरीर के कर्म कहीं राग करावता नथी, तेमज ज्ञान करावता नथी। राग ते चारित्र गुणनो विपरीत पर्याय छे, ते ज्ञान जीवनो पर्याय छे, पन मिथ्या दृष्टि ने अन्यता भासे छे। यानी कुछ उसके मान्यता ही अलग सी है। बस यही रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मसकनम सदा देत हो।